बहुत शुक्रिया। मैं सामीन के लिए अभी बात बड़ी तवज्जो से सुनने की है। अक्सर औकात फेसबुक पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे आपको हमें अहादीस आ जाते हैं, हम बिना तस्दीक किए उन अहादीस को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, मगर मुझे पर्सनली एक बार इसको चेक करने का मौका मिला, क्योंकि मेरे भी नोटिस में कोई लेके आया था कि अगर आप उनका हवाला जाके चेक करते हैं तो वो अहादीस नहीं होती। हालांकि कुरान पाक के अल्फाज बनाने में या अहादीस को मन घड़त करने के का बहुत ज्यादा गुनाह है। और यहां पर मैं इस जिक्र करना चाहती हूं कि ये जो सोशल मीडिया पे इस वक्त न्यूज सर्कुलेट कर रही है, ये है सऊदी फतवा हाउस ने ये फतवा जारी किया है। और मुस्तकिल फतवा कमेटी का अगर आप फतवा नंबर दें लिखें तो वो है 19402। अगर डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब ने जैसे फरमाया कि अगर मुस्तकिल फतवा कमेटी की वेबसाइट पे जाएं तो अगर उन्होंने ये फतवा दिया है तो दिस फतवा मस्ट बी देयर वेयर इट इज नॉट देयर। बहुत शुक्रिया। आपने 3072 बहुत शुक्रिया। अब आप किस हवाले से कह रहे हैं मुझे इसके बारे में पता नहीं। डॉक्टर साहब की इजाजत से आपकी कॉल ले लूंगी तो आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बात हो गई और ये दोनों बातें जो हुई हैं ये सोशल मीडिया के हवाले से हुई हैं कि सोशल मीडिया पे चाहे वो कुरान की आयात हों चाहे वो अहादीस हों मनगढ़ंत चीजें चल रही हैं। बहुत से लोग जिन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है, जो आलम है, वो आम लोग जो बेराहरवी फैलाना चाहते हैं उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं, मगर वो लोग जो जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है, अपने थीसिस लिखे होते हैं, हम उनकी बात को अगर वो सही भी हो तो हम उसको गलत गर्दान देते हैं। बहरहाल आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं, हमारा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना था। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की तरफ लेकर के जाना चाहती हूं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ। अदलिया में इस्लाहात की हद तक आईनी तरामीम पर इत्तफाक हो गया। और ये क्या है, 26वीं आईनी तरमीम के मुजवजा मुसवदा क्या है? पीपल्स पार्टी ने और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने तो अपना मुसवदा आउट कर दिया, मगर नून लीग ने अभी अपना मुसवदा आउट नहीं किया, तो ये मुसवदा तो एक ही होगा, क्या कैसे इसको एलैबोरेट करेंगे आप?
आपका बहुत अच्छा सवाल आपने रेज किया है। मैं सबसे पहले तो आपकी एक बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो बात कही है ये बहुत बड़ी वजनी बात आपने कही दिल्ली के साथ, कि होता ये है कि जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हदीस का नंबर भी दर्ज होता है, तो लेकिन जब हम उसे रिसर्च करते हैं तो उस नंबर की को हदीस हमें मिलती नहीं या उसका मज़मून कुछ और होता है, इसलिए हमें बहुत खबरदार होने की जरूरत है। ये आपकी तरफ से एक नेकी और सदका है ये भी ये बात कहना, ताकि लोग इस पर अमल करें। आयदा जो है बराह रास्त नंबर सोशल मीडिया पर जब हदीस का पैगाम आए तो फौरी तौर पर यकीन करने की वजह से देख लिया करें। मतलब अब आता हूं आपके सवाल की तरफ। बात यह है कि अब आप ये देखिए कि अभी चंद मिनट आपके प्रोग्राम शुरू होने से चंद मिनट पहले मेरी पाकिस्तान में एक बहुत बड़े वकील से बात हो रही थी, और जो कि इस मामले में इस आनी तरमीम के बारे में उससे बात हो रही थी, क्योंकि मैं लिखने वाला हूं, मुझे प्रोग्राम भी करने होते हैं, इसलिए मैंने उससे पूछा। तो उन्होंने कहा बात यह है कि अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब जो बिलाल की बिलाल भुट्टो की जो गुफ्तगू हुई है अभी, तो उस मसवदे का भी मामला सामने नहीं आया, बस इतना कह दिया कि हमारा इत्तफाक हो गया है, और ये नहीं बताया उन्होंने, मौलाना ने सिर्फ इतना कह दिया कि जो वो बातें जो कि हम नहीं पसंद करते थे उनको निकाल दिया गया। तो होना तो ये चाहिए था कि मौलाना खुद बात की तस्दीक करते कहते कि फलां फलां चीजें इन मसवदे में आई हैं, हमने अपना ये मसवदा रखा है, बिलाल का ये मसवदा आया है, इन बातों में हमने इत्तफाक किया है, तो वो तो चीजें सामने आई नहीं। अब उन्होंने ये आखिर में ये कहा कि अब हम इस मसवदे जिस मसवदे पर मेरा और बिलावल का इत्तफाक हुआ है आज के बारे में, कल वो कह रहे थे कि आज के लिए कि मैं आज हम वहां पे मियां नवाज शरीफ साहब से हमारी मुलाकात होगी, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हो गई, वो भी टीवी दिखा रहा है, लेकिन क्या बदनसीबी है कि अभी तक मसवदा सामने नहीं आ रहा। वो मसवदा यानी सेनेट, अब आज सेनेट का इजलास बुला लिया गया है और सेनेट के इजलास में से पेश किया जाएगा, वहां पे इस मसवदे का खोला जाएगा। इसलिए मैं आपके इस चैनल के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कि इस मसवदे में बात में हो, اور میں کہوں اس کا انکار کروں، یا نہیں ہو تو میں اس کا اقرار کروں. تو اس لیے بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو خوفناک چیزیں دو تین وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک نیا آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بہانے اس کی یعنی پشت پہ یہ چیز رکھی جا رہی ہے کہ جی کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر مقدمات کا بوجھ بہت ہے، اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے ہم نئے ججز جو ہیں اس میں تعیناتی کریں گے. ایسی بات نہیں ہے، جو چیزیں سننے میں آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. یہ واضح کیا جاتا ہے کہ یہ جو یہ پوری کی پوری کارکردگی ہے 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ اور اختیارات سے متعلق ہے. تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کین بی دا بیسٹ چیف جسٹس آف پاکستان، مگر انہوں نے بھی کوئی واضح بیان نہیں دیا. جب عمر کا ہوتا تو وہ کہتے ہیں اگر سب کا فائدہ ہوگا تو میں بھی زیادہ عمر تک سروس دے دوں گا. دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ایکسٹینشن کا قائل بھی نہیں ہوں، مگر اگر سب کی عمر بڑھے گی تو میری بھی عمر بڑھ جائے گی تو میں سروس دے بھی سکتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ 26ویں جو آئینی ترمیم کو بڑا ایمفسائز کیا جا رہا ہے اور اس پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے، اس اختیارات سے متعلق ہے جس میں نئی آئینی عدالت کی تشکیل سے لے کر اعلی عدالتوں میں ججز کی تعیناتی اور سپریم کورٹ کے اختیارات سے متعلق اس میں سفارشات شامل ہے. اب یہاں ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس کے بعد اپنے اس سبجیکٹ کی طرف آؤں گی کہ جو اس وقت شنگائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، اٹ از سچ ہیوج ایونٹ، پوری قوم کی توجہ اس کی طرف ہے، مگر کیا ایسی بات ہے کہ ابھی تک نئے چیف جسٹس کا اعلان بھی نہیں ہوا، قاضی صاحب کی ریپلیسمنٹ بھی کوئی نہیں آئی، کون سبسٹیٹیوٹ کرے گا ان کو، اور یہ شنگائی تنظیم کے اجلاس کے فوراً بعد پارلیمان میں اس ترمیم کو پیش کرنے کے خواہاں ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ 17 اکتوبر کو طلب کیے جانے سے متعلق سمری کی منظوری کے لیے ایوان صدر سمری اس کی بھیجی گئی ہے، تو یہ کیا ایسی پرابلم ہے کہ جب پوری قوم کو ایس سی او کی طرف، تعاون کانفرنس کی طرف ان کی توجہ رکھتے ہوئے پچھلے دروازے سے 26ویں ترمیم کو منظور کیا جانا، اور کیوں ضروری ہے 25 ستمبر سے پہلے پہلے یہ سارا کچھ اکمپلش کر لینا؟
اب خدشہ تو اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے، اور خدشہ ہے اور خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم نہیں ہوتی تو جو نئے چیف جسٹس آئیں گے جو منصور صاحب، وہ اپنے دو تقاریر میں، دو سپیچز میں سختی سے اس حکومت کو وارن کر چکے ہیں کہ اسلام آباد سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے ہیں اس پہ منوان عمل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، وغیرہ اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہوں، سخت ہوں گے، اور اس کے کانسیکوینسز خطرناک، سخت تو خطرناک ہوں گے. اس میں مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے سپریم کورٹ نے دو وزیر اعظم کو گھروں بھیج دیا تھا، اس طرح یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی. اور وہ اگر ان کے جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو لازم بات ہے کہ وہ جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ریزرو سیٹس کے بارے میں جو ان سے حق جو پی ٹی آئی جو ہے دعویٰ کرتی ہے پی ٹی کو اور سیٹیں ملیں گی اس کے بارے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل ہو بھی جائے اور اس کو اگر جو ریزرو سیٹس ہیں پی ٹی آئی کو وہ مل بھی جائیں اس کے فیصلے مطابق، تو پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آتی. اور لوگ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سوشل میڈیا یہ افواہ پھیلا رہا ہے کہ جی پھر پنجاب کی حکومت گر جائے گی، پنجاب حکومت ہماری حکومت آ جائے گی. ایسا نہیں ہے، نمبر آپ چیک کر کے دیکھ لیں، نمبر کے حساب سے جو ہے نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ ہوگا کہ ٹائم ٹف ضرور ہوگا، پھر نیک ٹو نیک ان کی فائٹ ضرور ہوگی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی والوں کا خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ ترامیم منظور ہو جاتی ہیں ایس ٹی جس کا مسودہ کل جاری ہوگا، کیونکہ کل جیسے اجلاس بلایا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیار لے لیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران کا کیس جو ہے پھر فوجی عدالت میں چلانے کا حکم صادر ہو جائے اور سپریم کورٹ میں چارج چیلنج نہ کیا جا سکے، اس میں سپریم کورٹ کے اس حق کو لے لیا جائے مطلب اس بات کو. تیسری بات یہ کہ پارلیمنٹ پھر جو بھی قوانین پاس کرے مطلب ہے وہ اسے پھر جو ہے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج نہ کیا جا سکے، کیونکہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے دوران یہ لڑائی چل رہی ہے پارلیمنٹ کہتی ہے یہ حق ہمارا ہے کہ ہم قوانین بنائیں گے، آپ نے اس قانون کی تشریح کرنی ہے، اس میں ترمیم آپ نہیں کر سکتے، قانون بنانا ہمارا حق ہے، آئین نکل بھی کہتا ضرور ہے، لیکن آئین میں ایک یہ بھی نقطہ ہے کہ اس کی اس اگر پارلیمنٹ کو مقدم ایسا بناتی ہے تو جو سپریم کورٹ جو اسے ویریفائی کرے، اب یہ جو ویریفائی کرنے والا مسئلہ ہے وہ حکومت سے ان سے وہ حق واپس لینا چاہتی ہے اور نئی آئینی عدالتیں بنانی چاہتی ہے، تاکہ اس آئینی عدالت کا نام سے نئی آئینی عدالت بتایا گیا لیکن کام یہ اپنی مرضی کے وہاں پہ کروانا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ معاملہ اگر شروع ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو میں نے پہلے کہا جو خدشہ جو ہے کہ عمران بہرحال ایک پاکستان کی مقبول جماعت ہے پی ٹی آئی، اس جماعت کے پہلے دن وہ ہنگامہ آپ کے سامنے جو ہنگامے ہوئے اس ہنگامے کو روکنے کے لیے کھڑی، ابھی پھر یہ ہنگامہ ہونا شروع ہو گیا تھا، پھر اس بات پہ ٹال دیا گیا کہ ڈاکٹر بھیجا جائے، انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ عمران خان کو جو جیل کے اندر جو زہر دے دیا گیا ہے، وہ بڑی شدید بیمار ہیں، ایک افواہ یہ پھیلا دی گئی کہ ان پہ بڑا تشدد ہوا ہے، ساری باتیں ہوئی ہیں، پھر حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ عمران خان کے جو ذاتی جو ڈاکٹر مالج ہیں ان کو بھیج دیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ کے ڈاکٹر بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو عمران خان کے جو ڈاکٹر ہوں گے وہ آ کے رپورٹ دیں گے، پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ اس بات پہ جو ان دونوں کا پی ٹی آئی نے اپنا جو دھرنا دینا تھا یا جو ہنگامہ کرنا تھا یا جو کوئی جلوس نکالنا تھا اسے ملتوی کر دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ گوگل شنگائی تنظیم کاؤنسل کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم ریسپیکٹ میں یہ کام چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ آپ کا وہ سوال بڑا جامع بڑا زبردست سوال ہے کہ آخر کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، کیوں اس نئے چیف جسٹس صاحب کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک طرح تو یہ ہے کہ اب قاضی فائز صاحب کا جو الوداعی اشاریہ اس کا بھی ایک نوٹس جاری ہو گیا، رجسٹرار نے وہ بھی خط جاری کر دیا ہے، کوئی الوداعی اسے اشاریہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ قاضی فائز صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے کہ میں آپ ایسا کیجئے کہ ایک سادہ سا پروگرام رکھیں، میں نہیں چاہتا کہ 15-20 لاکھ روپے کا خرچ اس میں اٹھے، کیونکہ ہمیشہ 15-20 لاکھ روپے کا خرچ اٹھتا ہے اس کے اوپر، جو آخری الوداعی جو تنظیم ہوتی ہے اس میں کھانا وانا لوگوں کو بلانا، تمام باس لوگوں کو بلانا، انہوں نے کہا کہ میں یہ حکومت قوم کے پیسے بچانا چاہتا ہوں اس لیے آپ اسے سزا رکھیں۔ ایک طرف یہ بھی لوگ جنہوں میں یہ مشکوک شبہ پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک دو جج جا رہا ہے، دوسرا یہ کہ اس تنظیم میں سننے میں یہ آیا ہے، اب میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ اس کا انکشاف کر رہا ہوں، سننے میں یہ آیا ہے کہ اس تنظیم کے اندر باقاعدہ طور پہ قاضی فائز صاحب کو جانے کی اجازت ہوگی، ان کو بھیجا جائے گا اور یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس دیکھیے آپ نے یہ جو پی ٹی آئی یا اس جو اپوزیشن تھی اس نے شور مچایا تھا کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے کام کے لانا چاہتے ہیں، دیکھیے ان کو گھر بھیج دیا ہے، لیکن کیونکہ ان کا پروگرام یہ ہے کہ نئے طریقے سے پر کارڈ دیے جائیں سپریم کورٹ کے، تاکہ وہ آئندہ جو ہے وہ جو منصور صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ اس کے کون سے سخت ہوں گے، اس آئندہ سپریم کورٹ جو اس پہ کوئی ایکشن نہ لے سکے، تو یہ ساری صورتحال ہے، بڑی گمبھیر صورتحال ہے، ہمیں اس کا کل تک انتظار کرنا ہوگا۔
بہت شکریہ۔ میں سر آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ عدالتوں نے، میں نے آپ کو بھی ایک آرٹیکل بھیجا تھا جناب، اگین میں کسی ایک شخص کو نہیں کری، مگر اس آرٹیکل کے بیچ میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ پاکستان کی عدلیہ بے وقار، یا وہ نوٹیفیکیشن دیتی ہے یا وہ اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے، مگر ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے پاکستان میں، جس کے لیے اگین آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ، اور آئی تھنک وہ بھی اسی کرپٹ چیز کا حصہ رہے ہیں اور آج وہ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ جناب حسین حقانی صاحب نے جو اپنا آرٹیکل لکھا تھا، بڑا خوبصورت آرٹیکل، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ عدلیہ اپنا فیصلہ کرتی ہے، امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی، بیوروکریٹ عمران خان کے دور میں بھی کسی ایک بندے نے آنکھ مان کے نہیں دیکھا، مان کے مجال نہیں کہ کوئی چیز کو انہوں نے چلنے دیا ہو۔ مجھے بھٹو صاحب یاد آتے ہیں کہ بھٹو صاحب جب آئے تھے تو ان کا ایک ویژن تھا پاکستان کا، انہوں نے 303 لوگوں کو فائر کیا تھا، جو ہائیلی پلیسڈ لوگ تھے، صرف اس لیے تاکہ وہ جو امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن آف دا آرڈرز میں جو لوگ مانے تھے۔ تو آپ اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں کہ کیا طریقہ کار آنا چاہیے، جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہو کہ آپ کی جو ब्यूरोक्रेसी है वो एग्जीक्यूट करे ऑर्डर्स को, एग्जीक्यूशन इज द मस्ट थिंग।
आपने फिर बहुत उम्दा सवाल रेज किया है। बात यह है भाई, ब्यूरोक्रेसी की बात करिए, ब्यूरोक्रेसी ये ब्यूरोक्रेसी है हमारे मुल्क के अंदर, ये ब्यूरोक्रेसी बन गई हुई है। मतलब अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आगे चलता हूं। भुट्टो ने, आपने जिक्र किया, भुट्टो ने 303 आदमी को फायर किया।
जी डॉक्टर साहब, मुझे करेक्शन आ गई, अयूब खान ने 303 लोगों को फायर किया था ब्यूरोक्रेसी के, और भुट्टो साहब ने 1100 लोगों को फायर किया।
1100 लोगों को किया था, जी बिल्कुल दुरुस्त। मतलब अब आप ये देखिए कि भुट्टो ने एक ये भी ऑर्डर कर दिया था कि कोई भी ऑर्डर जो है ना मेरी मंजूरी के, यानी मेरे ऑर्डर के बगैर, मेरी मंजूरी के बगैर आप नहीं जारी करेंगे।
सही।
और देखिए ब्यूरोक्रेसी ने क्या कर दिया, ब्यूरोक्रेसी ने भुट्टो साहब के दफ्तर में फाइलों के ढेर लगा दिए, मतलब मैं भुट्टो को सब उठाने की जरूरत नहीं। आप देखिए, जो मुल्क का वजीर आजम होता है उसके लिए और भी बेशुमार काम होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने कहा जी आपका हुक्म है जी, कोई ऑर्डर जो है ना आपकी मर्जी के बगैर आगे नहीं जाएगा, कोई फाइल आपको मिल जाती, इसलिए सारी फाइलें आपको भेज रहे हैं। ये भुट्टो साहब को 2 हफ्तों के अंदर उन्होंने मतलब चने चबवा दिए और उन्होंने कहा उठाओ यार सारी ये फायर, उठाओ का करो काम। मतलब
मगर 1100 बंदों को तो फायर कर दिया था ना।
नहीं, फायर कर दिया ना, फायर करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आप पढ़ सकती हैं। मतलब ये भी मैं तारीखी बात आपसे कर रहा हूँ, मतलब ये जो बात आपसे मैंने की है, ये कोई नाम साहब ने किताब लिखी भुट्टो के ऊपर, उसके अंदर बकाया दर्ज है, क्योंकि वो उस भुट्टो के मुशीर थे जिन्होंने ये किताब लिखी। मतलब उन्होंने कहा कि तमाम यानी मुल्क के जितने भी मतलब अदारे थे, उन जो जितने भी चीफ सेक्रेटरी थे, डिप्टी सेक्रेटरी थे, वो सारी की सारी फाइलें जो भुट्टो साहब के दफ्तर में पाइल अप होनी शुरू हो गई। मतलब और 2 हफ्तों के दरमियान इतनी फाइल्स आ गई, मतलब कि वो घबरा गए, मतलब क्या किया जाए। मतलब उन्होंने कहा जी आपका हुक्म है कि मेरी मर्जी बगैर मैं कोई फैसला आप नहीं करेंगे। भुट्टो साहब ने इसको ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालने के लिए बात की थी, लेकिन उनके पास 100 और तरीके होते हैं। अब दूर न जाए, आप जुनेजे के जमाने में आप देखें कि जब उन्होंने गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का काम खत्म किया था कि छोटी गाड़ी में जाएंगे, जितने भी जनरल हैं या जितने सेक्रेटरीज हैं, जितने भी हैं, उस वे आप देख लें क्या इन्होंने क्या किया था, किस तरह उन काम का किस तरह मजाक उड़ाया था। कुछ यानी कारें तो छोटी आ गई, लेकिन छोटी कारों की आड़ में जो और करोड़ों रुपये जो बर्बाद हो गया वो अभी आपके सामने है। फिर अवश्य आप आगे आ जाएं, इमरान खान जब आए तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि गवर्नमेंट की जो 67 बड़ी गाड़ियां थी वो नीलामी लगा दी, बहसें भी लगा दी नीलामी के ऊपर, क्या हुआ। मतलब इमरान खान का अपने जमाने में फिर से दोबारा वो सिस्टम फिर से दोबारा शुरू हो गया, फिर इजलास हुआ तो फिर से नई गाड़ी खरीदनी पड़ गई। मतलब जब OIC का इजलास हुआ था तो फिर से नई गाड़ी खरीदनी पड़ गई। इसलिए ब्यूरोक्रेसी का हमारे मुल्क के अंदर, हम अदालत की तरफ तो जाते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ हम जाते नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बगल में नाकाम हो गए, इसको क्या किया जाए, इसको लगाम डाल गया, गोवा क्या और भी है। अब आप ये देखिए, आप ही के प्रोग्राम के अंदर आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, FBR का उन्हें इंचार्ज बनाया गया था, फिर उन्होंने हाथ बांध के उन्होंने भी जान छुड़ा ली। आप उन्होंने कहा कि आपने ड्यूल नेशनलिटी की बात की थी आपने भी, तो उन्होंने कहा था कि जी आप मुझ पर रहने दें। वे देखिए, उन्होंने ये कहा था कि FBR के अंदर, FBR भी आखिर ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है ना। मतलब देखिए FBR के अंदर 18,000 लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा था हुकूमत से, मैंने कहा वजीर आजम से कहा, आर्मी चीफ से मैंने कहा कि ये 18,000 आदमी से 16,000 आदमी को घर में बिठा दें, तनख्वाहें दें, लेकिन दफ्तर में ना आने दें। 2,000 आदमी से मैं ये महफा चलाकर आपको दिखा दूंगा, और आपने जो बजट जो है आपका जो टैक्स का मामला ये मैं ठीक करवा दूंगा। उसने कहा 16,000 आदमी को घर में बिठा दें, आप इनको तनख्वाहें दें बेशक। उसकी वजह हर आदमी जब अपने घर से निकलता है, अपने दफ्तर में पहुंचता है, तो फिर वो एक कारोबार की नई दुकान शुरू हो जाती है, नई दुकानदारी आके चलाता है। ये ब्यूरोक्रेसी जो इस तरह कर रही है, ये तमाम महकमों में है। मैं FBR की मिसाल इसलिए दी कि क्योंकि आपने उसका इंट्रू कर चुकी है, लोग आपके प्रोग्राम देखते हैं, तो इसलिए मैंने उसका हवाला दिया। ये ब्यूरोक्रेसी हो रही, इसका इलाज है, इसका इलाज ईरान ने किया, ईरान ने जैसे किया, इसका इलाज यही बाकी बच गया है। लेकिन होता क्या कि हम ऐलान करते हैं इलाज के, लेकिन इलाज करते नहीं, उस नमक की कान में जाकर खुद नमक बन जाते हैं। एक सबसे बड़ी मुसीबत यह है। अब ये जो अदालती मामला है, ये भी तो ब्यूरोक्रेसी का मामला है। ये वजारत कानून की जो सेक्रेटरेट है वो इसे चला रहा है, वो सारा ये काम कर रहा है, वो इन्हें रास्ते भी बताते हैं। और जब इन्हें रास्ते बताते हैं, मतलब हुकूमत के लोगों को हुकूमत करने के तरीके बताते हैं, तो साथ ही वो अपना पहलू इस तरह बचा लेते हैं, उन्हें पता है कि अगर ये कामयाब हो गए तब भी हम कामयाब हो जाएंगे, अगर ये चले जाते हैं तो ताकि हम ऐसी पॉलिसी जरूर रखें कि नई आने वाली हुकूमत को हम खुश आमदे कहें। अब आप देखिए, जब नई हुकूमत आती है, मुखालफिन की हुकूमत, आज जो अपोजिशन में कल हुकूमत में आएंगे, तो यही ब्यूरोक्रेसी होगी, यही फिर उनके गुण गाएगी। मतलब सारा मामला होगा। इसका इलाज वही है जो ईरान ने किया, इसका इलाज वही है जो बुरनाई ने किया है, इस ब्यूरोक्रेसी का इलाज वही है जो फ्रांस के अंदर हुआ, इंटर फ्रांस के अंदर उसका इलाज हुआ, इसके अलावा इसका और कोई इलाज नहीं है।
बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से तमाम चीजें बताई। एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कायदे आजम से मुतल्लिक बात हो तो बहुत से लोग कायदे आजम से भी इख्तलाफ करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी की बारी हो तो हम फौरन कह देते हैं, मगर साहब जिस इंसान ने स्पेशलाइजेशन किया हो तो कहीं ना कहीं हमको हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते, वी हैव टू लिसन टू दोज। मैं तो खुद सीखती हूं और जाहिर है कहीं कहीं एतराज आ जाता है क्योंकि मेरे जैसे नालायक इंसान के दिमाग में सवालात उठते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खुला टाइम दिया। एक और चीज मैं आपके साथ जाते जाते शेयर करती चलूं और ये मैं आपकी इतला के लिए शेयर करना चाह रही हूं। कल मेरे बहुत अच्छे भाई उनके साथ मेरा प्रोग्राम था, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सुने। पाकिस्तान की अगर अदलिया के बारे में बात करते हैं या पाकिस्तान की पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेशनली सर्वेज होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेटिंग करती हैं मुल्कों की पासपोर्ट के लिहाज से या मुख्तलिफ चीजों के लिहाज से। पाकिस्तान आर्मी के बारे में यकीनन हमें जिन अशखास के साथ इख्तलाफ है, शदीद इख्तलाफ है, पांचों गलियां बराबर नहीं होती और यकीनन आर्मी में एक ग्रीड पैदा की गई जिसमें पॉलिटिशियंस 100% इसका मोहरा साबित होते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस को होता है कि ठीक है जी मैं हुकूमत में हूं, मेरे बंदे उन्होंने नौकरी करा दवांगा, पावर इज पावर हंगरी, जिसमें आर्मी के लोग भी पावर हंगरी हुआ करते हैं। कल मैंने एक पोस्ट शेयर की थी और ये अगेन अगर पाकिस्तान की इदारों की अगर हम बात की जाए तो ये साहब लंदन द पाकिस्तान आर्मी, मैंने आमिर आपको भेजा, आई विश यू कैन शो इट। लंदन पाकिस्तान आर्मी कैम्ब्रेन टीम हैज वन गोल्ड इन एक्सरसाइज कैम्ब्रेन पेट्रोल 2024 बाय स्क्योरिंग द हाईएस्ट पॉइंट 864 इन एक्ससीपी 24 एंड डिफीटेड 111 टीम्स रिप्रेजेंटिंग यूरोप। यूरोप से 111 टीम्स रिप्रेजेंट कर रही थी एंड पाकिस्तान की जो आर्मी की टीम है वो उस दे स्टूड 864। द 67 पंजाब रेजिमेंट वन द गोल्ड मेडल बाय स्क्योरिंग द हाईएस्ट एवर 864 पॉइंट्स इन द कॉम्पिटिशन विच ऑल्सो इंक्लूड्स टीम फ्रॉम द इंटायर यूरोप। 67 पंजाब रेजिमेंट पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट फॉर द सेकेंड कंजेक्टिव ईयर आफ्टर स्टैंडिंग फर्स्ट इन पाकिस्तान आर्मीज इंटरनल कॉम्पिटिशन। पहले इंटरनल कॉम्पिटिशन हुआ था, फिर यूरोप के ये 67 कंट्रीज में हुआ है, वेयर दे सिक्योर द हाईएस्ट पॉइंट्स। मैंने इसको शेयर किया, मेरा ख्याल था लोग डंडा लेके मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बट आई एम टेलिंग यू कि इस टिकटॉक को अराउंड 2000 प्लस लोगों ने फॉलो भी किया। और अगर पाकिस्तान आर्मी के लोग अपनी परफॉर्मेंस को करते हैं तो पाकिस्तान के जवान बड़े बेहतरीन भी हैं। इट्स नॉट कि मेरी इंटरनेशनल रेटिंग होती है जहां पर बाकायदा दे प्रूव्ड देमसेल्व्स, दैट्स व्हाट इट इज।
बात यह है कि आपके पीछे जनरल लिखे क्यों पढ़ेंगे, यहां पे बीबीसी इसको खबर को उसने चलाया है, स्काई ने चलाया है और चैनल 4 ने इसको चलाया है, सीएनएन ने थोड़ी सी खबर छोटी सी दी है, बस ज्यादा नहीं किया।
लेकिन आप 67 पंजाब रेजिमेंट वन द गोल्ड मेडल बाय स्क्योरिंग द हाईएस्ट एवर 864।
आप ऐड कर दूं इसमें जो खबर आप मेरे सामने जो चल रही है इसमें ये दर्ज नहीं किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी टॉप किया है इस ग्रुप में, पाकिस्तान की फौज के ग्रुप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी
माशाल्लाह। सो टोटल 118 टीम्स ने रिप्रेजेंट किया है यूरोप की, 118 टीमों ने रिप्रेजेंट किया है जिसमें पंजाब रेजिमेंट जो है दे स्टूड फर्स्ट, दे वन गोल्ड इन एक्सरसाइज कैम्ब्रेन पेट्रोल 2024। यकीनन बहुत से लोग, जैसे हम कुरान पाक की आयात की बात करते हैं, जैसे हम अहादीस की बात करते हैं,
आप यहां ये भी कर दूं कि पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने ये 22 अवार्ड लिए हैं, ये 22वां अवार्ड है उसका टॉप का,
और ये इंटरनेशनली अगर हम अदलिया को गलत कह रहे हैं तो पाकिस्तान की अदलिया ही है।
की बात कर रहा हूँ,
पाकिस्तान की अदलिया ही गलत है, मगर अल्लाह करे जो चार पांच जनरल है, अल्लाह करे इन्हें दी कश्ती दरिया दे विच डूब जावे जेड़ा पाकिस्तान नु खाई जा रहे ने। आमीन।
आपकी बद्दुआओं से या दुआओं से तो काम होने के हो नहीं सकता।
नहीं, ये मैं तो यही कह रही हूँ ना कि भाई जितने चोर हैं, वो एक भाईजान है, उन्होंने अभी मैं उनका मैसेज आपके साथ मैं आई विल नॉट बी एबल टू शेयर, उन्होंने जो लिखा, मतलब हम मेरी कल डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब का मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो मैं ये कहती हूँ कि आप कहते हैं जी फलां अजाब ज़दा कौम है, इस वक्त तो हम ही सबसे बड़े अजाब ज़दा कौम है, क्योंकि आपका इमाम गलत रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका पीर फकीर आपको गलत तरफ लेके जा रहा है, जादू टोना नाच गाना हर चीज हमारे बीच में शामिल, हालांकि वी आर नॉट अलाउड बाय इन आवर रिलीजन, और फिर हम किसी भी पढ़े लिखे की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब से भी मैं यही कह रही थी कि डॉक्टर साहब जहां आप ये कहते हैं फाका कशी की बात करते हैं, तो हमारे अपने मुल्कों में अभी पाकिस्तान में देखें कितने तूफान आए, अल्लाह ताला के अजाब से हर लम्हा बचना चाहिए।
आप मुझे इसका जवाब देने दीजिए, क्योंकि इससे पिछले के वक्त खत्म हो जाए। मैंने कल भी आपसे बड़ी गुजारिश की थी दस पे दस का एहतराम के साथ, आज भी फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ, ये लोग सुन लें इस बात को, ये मैं आपको बात जो कह रहा हूँ कुरानी नसूस से, कि मेरे अल्लाह ने मुसलमानों के बारे में मेरे आका से उसको ये बताया कि अगर तुम जो उफू बिल अहद किया है, उफू बिल अहद क्या है, मैंने कल भी
आपको अहद तोड़ देना, कोई
उफू बिल अहद किया शिक नहीं करोगे, हमारा रब से अहद क्या है, तीन चीजों का अहद है हमारा,
रब को एक को मानना, अंबिया इकराम पे यकीन लाना और आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तौहीद रिसालत और आखिरत, ये हमारा उफू बिल अहद है। ये कहा कि अगर तुमने इन चीजों पर अमल ना किया तो मैं दुनिया की रजील कौमों से तुम्हें रुस्वा करवा दूंगा, यानी गोया दुनिया में रजील कौमें और हैं जिनसे हमें रुस्वा करवाया जाएगा।
बहुत
ये मैं आपको फिक्र पे गौर करें जो मैं आपसे कह रहा हूँ।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब से आपकी मैंने बात कराई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिंदगी को बदल कर दिया है, मैं बल्कि आपको एक रोबोट दिखाना चाहती हूँ, एलन मस्क ने जो बनाया है, बल्कि मैं सोच रही थी मैंने तो डॉक्टर साहब वो एक घर की सफाई वाला एक ले लिया, वो कपड़ा फेरता है झाड़ू देता है, पर उसने जिन्नी मेरी जान खादी हुई है ना, खुदा की कसम मैं तोबा तोबा। तो मेरा बेटा कह रहा था कि मॉम दिस इज अ वेरी गुड, आमिर फौरन से पहले वो निकालिए, ये रोबोट है डॉक्टर साहब 20,000 अमेरिकन इसकी प्राइस है, एंड आई वॉन्ट एवरीबडी कि अब आपने अगर घर की मुलाजमा की जरूरत है तो बाय दिस रोबोट, मगर उसके लिए कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है मेरा ख्याल है। एंड वाजिद भाई वो कपड़े धोए, आपकी ग्रोसरी तैयार करे, वॉक्स लाइक मी, अगर मैं अपसेट हूं टॉक्स टू मी एंड यू नो गिव्स मी एवरीथिंग। एलन मस्क ने इसको अनवेल किया, दिस इज 20,000 अमेरिकन।
एलन मस्क जिंदाबाद,
ग्रेट मैन साहब,
जिंदाबाद,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिंदाबाद।
आपके घर में जो कंप्यूटर है, आपके घर में जो सफाई करने वाली है,
वो जो उन्हें मेरी जान कर दी,
वो तो चारों तरफ घूमती रहती है,
वो कपड़ा भी फेरती है, वो झाड़ू भी देती है, मगर वो हमेशा मेरे आंखे वेखे से बाहर हो जाती। और अगर ये अगर प्लीज ये दिस इज अ रोबोट, ऑप्टिमस इसका नाम है, ऑप्टिमस जनरेशन वन। डॉक्टर साहब आप भी देखें, और मैं पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहती हूं कि आप सिर्फ ये गंदी मंदी तस्वीरें ना देखा करें, अच्छी चीजें देखा करें। ये ऑप्टिमस वन है, इट्स अ ग्रेट कंप्यूटर, इसकी हर चीज के बीच में कैमरा है, इट वॉक्स, आपकी ग्रोसरी को निकालना, फूड को प्रिपेयर करना, इट डज एवरीथिंग, और आपके साथ हंसना, आपके गम में शेयर करना, डज एवरीथिंग विद यू। इट इज 20,000 अमेरिकन। इसकी स्पीड भी मैं कल देख रही थी, इसकी स्पीड को अभी ये बेहतर होगा, आप देखिएगा सही। और अगर मैं डिप्रेस्ड होंगी तो ये मेरे से बातें करके मुझे खुश भी करेगा, मेरे से वेदर को भी डिस्कस करेगा, सो आई विल नॉट बी अलोन एनी मोर।
ये भी जरा पता कर लीजिए ये रोबोट कितनी जुबानी जानता है।
जो जुबान मेरी पंजाबी उर्दू हर किस्म की जुबान बोलेगा वो अलग बात है, अगर मेल फंक्शनिंग होगी तो ये मेरा गला भी दबा देगा। जस्ट थिंक अबाउट स्पाइडरमैन 2। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब,
देखिए
अंडा भी पकड़ के, अंडा भी तोड़ के, अंडा भी पकड़। इजाजत दीजिए डॉक्टर, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खुदा ने कुरान पाक में ये दर्ज किया 1400 साल पहले, और जमीन की कोर लोहे में जो बनी हुई है उसका तज़किरा है, तमाम धातुओं का जिक्र है उसमें। अल्लाह ने कहा एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो।
सूरह हदीद जो है ना वो उसी पे
एग्जैक्टली, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, दिस इज व्हाट अल्लाह सेज। मतलब
ये चीजें आप कुरान की जो कोट करती हैं, तो कुरान की वो चीज इंटरप्रिटेशन जो है वो भी उसके बारे में जो मैंने आज आपने फिर दोबारा जिक्र किया है ना, यानी फादर कशी के बारे में और जीव रुस्वा करने के बारे में, इसके बारे में भी आप जिक्र कर दिया करें तो ज्यादा बेहतर है।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मतलब आप लोग कहते हो ना बस असी बख्शे हुए हैं, बाकी सारे
बिल्कुल
अच्छे लोग भी हैं।
बिल्कुल बिल्कुल ये बात
बिल्कुल कभी डॉक्टर इजाजत दीजिए, एक घंटा आपके साथ गुजार लिया है, अब मैं जरा अगला सफर शुरू करूं। थैंक यू।
आप भी किसी रिपोर्ट से कम नहीं है।
इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह साथ रहिएगा। मुझे यकीन है कि हम मुतफरिक बातों पे, दिस इज नॉट अ वी लॉग ऑन कि एक शख्स बात करे, हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस कम्युनिकेशन लाइफ, हम वी जस्ट कम्युनिकेट, वी एग्री टू डिसएग्री, बहुत सारी बातों से मुत्तफिक होते हैं, मगर अल्लाह करे कि वो एहतराम को मैं अपने हाथ से ना जाने दूं, हम एक दूसरे का एहतराम करते हुए आगे चलते रहें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज। आप प्रोग्राम को लाइक भी जरूर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बाय द वे फ्राइडे, टुडे इज वेनसडे, फ्राइडे को हम आपके साथ एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये रेडियो थॉन होगा, यानी वी आर रेजिंग फंड फॉर मेडोविल इस्लामिक सेंटर। इट इज प्रूवन फैक्ट, आप मेडोविल इस्लामिक सेंटर पे तशरीफ लेके जाएं, मस्जिद इख्तिताम तक पहुंची हुई है, फाइनल में आपको पता ही है कि एक घर बनने के बाद उस घर में फिर कारपेट है, हार्ड वुड फ्लोर है या जो कुछ भी है, वो तमाम चीजों को लेके चलना होता है। तो फाइनल मरहला है जिसके लिए फंड्स की जरूरत है। इस फ्राइडे को हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हेल्प जेनरसली, अगर आप मुसल्ला जात लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, अल्लाह ताला का है कि एक ईंट भी अगर मेरी तरफ से लग गई तो यकीनन अच्छी चीज की, अल्लाह करे कि मैं और आप अच्छा बो पाए। ये फ्राइडे को हमारा रेडियो थॉन होगा, 18 अक्टूबर का दिन बनता है, और आप डोनेट कर सकते हैं MICI मेडोविल इस्लामिक सेंटर, MICI.org पे जाके आप डोनेट भी कर सकते हैं। हमारे साथ फ्राइडे को आपने डोनेशंस में हिस्सा लेना है, एंड प्लीज पार्टिसिपेट जेनरसली कीजिएगा, शुक्रिया। हमारे आज के प्रोग्राम में मैं जिक्र करना चाहती हूं अपने जिन स्पॉन्सर्स का, सज्जाद अली साहब का एक शो होने जा रहा है, दैट इज 26 अक्टूबर को इटोबिको मोटर्स को इसका क्रेडिट जाता है, इटोबिको मोटर्स और शिराज हुसैन साहब। इसकी टिकट्स अगर आपको चाहिए, ये जनाब सज्जाद अली का टूर है कनाडा का, और 26 सैटरडे का दिन बनता है, 26 तारीख को इसकी टिकट eventbrite.ca पे अवेलेबल है। शो मीटिंग हाउस ओकवेल में होने जा रहा है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसकी टिकट्स के लिए आप प्राप्त कर लीजिएगा, कहां पे, eventbrite.ca, eventbrite.ca पे आप प्राप्त कर लें एंड टिकट हासिल कर लें। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या अगर आप अपने घर को बेचना चाहते हैं, तो मैं आरफा मुजफ्फर सिटीस्केप के साथ मेरा ताल्लुक है, यू कैन गिव मी अ कॉल, एंड ऑफ कोर्स अगर हम आपका घर बेचते हैं तो हम 1% पे सेल करते हैं, बाइंग ऑफ कोर्स यू डोंट पे, बट वी गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस। इस वक्त आपको जो प्रॉपर्टीज मार्केट में नजर आ रही हैं, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि एरिया कौन सा है, प्रॉपर्टी की हालत क्या है, लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी में अपग्रेड्स कितने हुए हैं। आपको बाज़ोकात, कल एक प्रॉपर्टी थी 104 एग्नस, आप इमेजिन कीजिएगा ये प्रॉपर्टी ऑल फेक प्राइसेस। मैं तो कहती हूँ टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड को इस पे सीरियस एक्शन लेना चाहिए कि तमाम रियल स्टेट एजेंट्स जो हैं ड्यू डिलिजेंस के साथ प्रॉपर्टीज को मार्केट में लेके आए, क्योंकि जहां पर मार्केट पे प्राइस कम हो जाती है और कम प्राइस शो की जाती है, जिसमें फिर बिडिंग वॉर स्टार्ट हो जाती है। और बिडिंग वॉर को अगर इन्होंने रोकना है तो इनको हर तौर पे इसको चेक करना होगा। एक प्रॉपर्टी थी, मैं उसकी प्राइस अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, मगर मुझे नहीं पता कि इसकी फाइनल क्या आया। ओशवा के इलाके में, कैन यू बिलीव कि माजिद भाई इसको लगाया था 600 या 599 समथिंग का लगाया था। गैस कितनी ऑफर थी? 6 ऑफर्स थी, और हर प्रॉपर्टी जो आपको इस वक्त गिवन प्राइस नजर आ रही है उससे कम अज कम 1.5-2 लाख से ज्यादा की बिक रही है। आज आई हैव माई शोइंग्स इन बर्लिंगटन के इलाके में, वहां पर भी मैं देख रही थी कि अगर घर जो है एक अपार्टमेंट जो है वो 7 लाख का लगा हुआ, बिका वो 8.5 लाख का, 1.5 लाख प्राइस ज्यादा है। तो यहां पे मेरा ख्याल है कि टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड को डेफिनेटली स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि आप अगर प्रॉपर्टी है तो आप रीसेंट मार्केट के लिहाज से उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस के, वरना ये गुत्थी सुलझने की है नहीं। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम साजोबाज, मैं आपके साथ आरफा मुजफ्फर। ये अब एक और प्रॉपर्टी 797 कुलीन रोड, इसमें भी ऑफर्स एक से ज्यादा, तकरीबन 4 या 5 ऑफर्स थी। देयर वाज अनदर प्रॉपर्टी इन ओशवा, वहां पर भी 6 ऑफर्स थी। और फिर रियल स्टेट वाले अपना जो काम करते हैं, विच इज रॉन्ग, और आई थिंक टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड को इस पे एक्शन लेना जरूर चाहिए। सुन रहे हैं प्रोग्राम साजोबाज, दो एक स्पॉन्सर्स, विल कम बैक, स्टे ट्यून्ड प्लीज।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900।
के कनाडा जिसको हम जानते हैं इन दिनों पीछे की तरफ जा रहा है। ट्रूडो और एनडीपी लिबरल्स के 9 सालों के बाद अखराजात बढ़ गए हैं, सड़कें खतरनाक और गैर महफूज हैं, और लोग गुर्बत में जी रहे हैं। लेकिन हम चीजों को दोबारा बेहतर बनाने के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन सेंस लीडर कंजर्वेटिव के पॉलिट के पास एक मंसूबा है, जिसका मतलब होगा कि सख्त मेहनत करके एक भारी आमदनी हासिल की जा सके, सस्ती खुराक और मकान खरीदा जा सके, और महफूज मोहल्लों में जिंदगी गुजार सके, उस मुल्क में जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं। आइए मिलकर एक बेहतर कनाडा बनाएं। ये पैगाम पे पॉलिव और कॉमन सेंस कंजर्वेटिव के तावन से पेश किया गया।
बदल दी हवा होवे या त्योहारां दा मौसम होवे, ओ मुंह मिठा ताजी बनदा ही है। ता इस बार हमेशा दी तरह समोसा स्वीट फैक्ट्री ते करवा चौथ लई ताजे खोए नाल बढ़िया मिठाइयां ले जाओ। पूजा दा समान, मठे, मिठाइयां ऑल अंडर वन रूफ। समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, चलो फ्रेश को लोकेशंस ब्रेमली एंड सैंडलवुड एंड एयरपोर्ट एंड कंट्री साइड, अते सब दी फेवरेट इको लोकेशन 1850 एल्बियन रोड अटोबिको ते भी आ सकदे हो। समोसा स्वीट फैक्ट्री विशिंग यू ऑल हैप्पी करवा चौथ, 416-213-1165।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 सीआईबीसी ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। cibc.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और सीआईबीसी फॉरन एक्सचेंज रेट्स लागू। सीआईबीसी, एम्बिशंस मेड रियल।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
वही बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
साडे कोल योजना है जो कि ओंटेरियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु कटाउन लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार यही सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो इस दी अदायगी ओंटेरियो सरकार वल्लों कीती गई है
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 जा quicktrucklube.com QTL बिकॉज वी केयर
कनाडा में 20,000 डॉक्टर्स हैं जो मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते और 32,000 नर्सें हैं जो हमारे अस्पतालों में काम करने से रोक दी गई हैं। हजारों दूसरे पेशावर लिबरल गेटकीपर्स की वजह से काम नहीं कर सकते बस अब बहुत हुआ कंजर्वेटिव लीडर्स पेयर पॉलिटिक ब्लू सी एग्जाम्स लेकर आएंगे ताकि नए आने वाले साबित कर सकें कि वो हमारे आला मेयारात पर पूरा उतरते हैं और मरीजों की मदद के लिए फौरी अपनी जॉब शुरू कर दें ये कॉमन सेंस है ये पैगाम पीए पॉलिक और कॉमन सेंस कंजर्वेटिव किताबों से पेश किया गया
जी साहब नाज़रीन वेलकम बैक अगेन एंड 4:41 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और सब अगर आपने घर की इंश्योरेंस या गाड़ियों की इंश्योरेंस चाहिए आपको तो हम आपको सिर्फ एक ही नाम देते हैं वो है राजा बादशाह जी का राजा बादशाह जी ऑल स्टेट के साथ मुंसलिक हैं और इनका दावा है कि भाई अगर आपके पास एक घर और दो गाड़ियों की इंश्योरेंस एक वक्त में आप इनके साथ करवाएंगे तो आपको 1,775 डॉलर की सेविंग करके देंगे ये ऑल स्टेट के जनाब राजा बादशाह गिव हिम अ कॉल फॉर कोई भी घर की इंश्योरेंस चाहिए आपको या आपको गाड़ियों की इंश्योरेंस चाहिए तो राजा बादशाह को कॉल करें 6472903773 इनका फोन नंबर है इसके साथ साथ ओपन माइक कैफे ओएमसी ओपन माइक कैफे ये भी दावा करते हैं साहब ऐसा खाना आपने कहीं नहीं खाया होगा जाके ट्राई करें एक दफा हमें फोन करके बताएं साहब कि कैसा खाना लगा आपको ओपन माइक कैफे के जनाब नासिर शाह साहब 1310 डंडास स्ट्रीट ईस्ट मिसेस सागा में वाके हैं 1310 डंडास एंड डिक्सी का मेजर इंटरसेक्शन बनता है ये 4165266800 इनका फोन नंबर है ओपन माइक कैफे पे जाके खाना जरूर खाइए और साहब लास्ट बट नॉट लीस्ट कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जनाब ये कहती हैं कि ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस कमर्शियल मॉर्गेज हो रेजिडेंशियल मॉर्गेज हो प्राइवेट मॉर्गेज हो कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज हो इसके साथ साथ रीफाइनेंसिंग रिन्यूअल सेल्फ एम्प्लॉयड एंड मॉर्गेजेस सेकेंड मॉर्गेजेस जैस्मिन परमार को आप फोन कर सकते हैं जैस्मिन परमार आपको मिलेंगी 9280 गोरवे ड्राइव या 2355 डेरी रोड जो भी करीब पड़ता है आप जाके इनसे मुलाकात कर सकते हैं आपकी अपनी जुबान बोलती हैं इंग्लिश हिंदी पंजाबी तो आप बात करनी है तो आप कीस्टोन की जैस्मिन परमार से मॉर्गेजेस के लिए आप बात करें 6479235659 जैस्मिन का फोन नंबर है चलिए साहब सजाद अली की आवाज में एक गीत आपको सुनाता हूं मैं जनाब तेरा नाम समाप्त हो गई
मैंने एक किताब लिखी है एक किताब लिखी है मैंने एक किताब लिखी है उस किताब के पहले सफ़े पर तेरा नाम तेरा नाम लिखा है तेरा नाम। मैंने एक किताब लिखी है उस किताब के पहले सफे पर तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम। बातें ही लिखी लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज़। दूसरे सफे पे मैंने सीधी सादी बातें ही लिखी लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज़ आती है आवाज़। मैंने जो आवाज़ सुनी है सुनी है उस आवाज के पहले सुनूं तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम सुना है तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम सुना है तेरा नाम। सदियों पुराने सभी राज खुल गए तीसरा सफा क्या लिखा कैसा शाये खुलने लगी सदियों पुराने सभी राज खुल गए राज खुल गए। मुझ पे कायनात खुली है
सुबह ऑन्टेरियो को कनेक्ट कर रहा है। हम रोजाना के सफर को कम करने के लिए नई सड़कों और हाईवेज की तामीर कर रहे हैं और बढ़ते हुए इलाकों को मुंसलिक करने के लिए अवामी ट्रांसिट को वसत दे रहे हैं ताकि आपका सफर तेज महफूज और आसान हो। मजीद मालूमात ontario.ca/builds पर मौजूद हैं। इसकी अदायगी ऑन्टेरियो की हुकूमत की जानिब से की गई है।
खूबसूरत दांत बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगु आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स क्राउन्स ब्रिजेस क्लीनिंग एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स फ्री कंसल्टेशन दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट 299-7466। गाड़ी घर या कमर्शियल जैसे कि बिजनेस ट्रक्स डिलीवरी व्हीकल्स कार्गो वैन्स वर्कशॉप्स ग्रोसरी स्टोर्स रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 416-302-2522 302-2522
बहुत शुक्रिया। हमारी टीम के तमाम लोग हर एक की बड़ी इम्पोर्टेंस है अपनी इम्पोर्टेंस है। सरवत की जाती मसरूफियात बहुत ज्यादा थी तो सरवत ने रखा लशी टुक टाइम ऑफ मगर शुक्रिया सरवत थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे याद दिलवाया। मेरी टीम की एक और बड़ी इम्पोर्टेंट मेंबर हैं जो आउटडोर शूट्स हमारे तमाम के तमाम मुकम्मल करती हैं मिन्नो जी। टुडे इज मिन्नो जी बर्थडे एंड मिन्नो जी क्रेडिट जाता है सरवत को उसे सुबह सुबह मुझे याद दिलाया कि आज मिन्नो जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू मिन्नो जी। अच्छा जी गाना मैं आपको अपनी मर्जी का सुनाऊंगी गाना फाखिर की आवाज में जो मैं लगा रही हूं और मैं ये आप दोनों को डेडिकेट करती हूं फॉर सरवत को भी और मिन्नो जी को भी मेरी पसंद का गाना है ना आप जो मर्जी हो शाजिया की तरफ से आमिर की तरफ से जीशान की तरफ से सरवत की जानिब से नाबदीप की जानिब से माजिद भाई की जानिब से आरफा की जानिब से ग्रब की जानिब से हैप्पी बर्थडे और बलजीत की जानिब से हैप्पी बर्थडे मिन्नो जी मगर गाना फाखर का मुझे बहुत अच्छा लगता है एंजॉय दिस।
काश हम जुदा न होते कभी अलविदा न कहते चाह नहीं था फिर भी पड़ा हमको जाना तुम हमको याद रखना कभी दिल से ना भुलाना हम पास हो या न हो हमें प्यार से बुलाना तुम हमको याद रखना कभी दिल से ना भुलाना हम पास हो या न हो हमें प्यार से बुलाना जो आंगन में थी फूल वो लाती होगी चुनते तो होगे कलियां हम नहीं हैं तो फिर भी महफिल सजती होगी सुनी न होगी कलियां ऐसे में थोड़ी सी आंखें भर लाना काश हम जुदा न होते कभी अलविदा न कहते चाह नहीं था फिर भी पड़ा हमको जाना तुम हमको याद रखना कभी दिल से ना भुलाना हम पास हो या न हो मैं प्यार से बुलाना तुम हमको याद रखना कभी दिल से ना बुलाना हम पास हो या न हो हमें प्यार से बुलाना
are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
770 AM دیا نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
کہ کینیڈا جس کو ہم جانتے ہیں ان دنوں پیچھے کی طرف جا رہا ہے. ٹروڈو اور این ڈی پی لبرلز کے 9 سالوں کے بعد اخراجات بڑھ گئے ہیں, سڑکیں خطرناک اور غیر محفوظ ہیں اور لوگ غربت میں جی رہے ہیں, لیکن ہم چیزوں کو دوبارہ بہتر بنانے کے لیے کامن سینس کا استعمال کر سکتے ہیں. کامن سینس لیڈر کنزرویٹو فی پالیف کے پاس ایک منصوبہ ہے جس کا مطلب ہوگا کہ سخت محنت کر کے ایک بھاری آمدنی حاصل کی جا سکے, سستی خوراک اور مکان خریدا جا سکے اور محفوظ محلوں میں زندگی گزار سکے اس ملک میں جسے ہم جانتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. آئیے مل کر ایک بہتر کینیڈا بنائیں. یہ پیغام پیپ آلیو اور کامن سینس کنزرویٹو کے تعاون سے پیش کیا گیا.
بدل دی ہوا ہووے یا تیوہاراں دا موسم ہووے او منہ مٹھا تا جی بندا ہی ہے, تا اس بار ہمیشہ دی طرح سموسا سویٹ فیکٹری تے کروا چوتھ لئی تازے کھوئے نال بڑیاں مٹھائیاں لے جاؤ. پوجا دا سامان, مٹھے مٹھائیاں, آل انڈر ون روف. سموسا اینڈ سویٹ فیکٹری, چلو فریش کو لوکیشنز برملی اینڈ سینل وڈ اینڈ ایئرپورٹ اینڈ کنٹری سائڈ, اتے سب دی فیورٹ ایک کو لوکیشن 1850 البین روڈ اٹوبیکو تے وی آ سکدے ہو. سموسا سویٹ فیکٹری وشنگ یو آل ہیپی کروا چوتھ,
416-213-1165. अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकिया है.
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा. सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज.
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471.
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता. सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं. इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन. अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 सीआईबीसी ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें. cibc.com/cashpickup पर जाएं. शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू. सीआईबीसी, एंबिशंस मेड रियल.
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है.
मेरी सेविंग $350.
मेरी सेविंग सिर्फ $100.
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है. मैंने सेव किए हैं $1,775.
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना.
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है. और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने. आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं. टर्म एंड कंडीशन अप्लाई. ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशक, 6472903773, 6472903773.
साडे कोल योजना है जो कि ओंटारियो नु जोड़ रही है. रोजाना आवाजाही नु कटाउन लई नवीयां सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार. यह सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल, सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको. ontario.ca/builds ते जाके होर जानो. इस दी अदायगी ओंटारियो सरकार वल्लों कीती गई है.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब. लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी. एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप. 5196220660 या quicktrucklube.com. QTL, because we care.
कनाडा में 20,000 डॉक्टर्स हैं जो मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते और 32,000 नर्सें हैं जो हमारे अस्पतालों में काम करने से रोक दी गई हैं. हजारों दूसरे पेशावर लिबरल गेटकीपर्स की वजह से काम नहीं कर सकते. बस अब बहुत हुआ, कंजर्वेटिव लीडर्स पेयर कॉलेज एक ब्लू सील एग्जाम लेकर आएंगे ताकि नए आने वाले साबित कर सकें कि वो हमारे आला मेयारात पर पूरा उतरते हैं और मरीजों की मदद के लिए फौरी अपनी जॉब शुरू कर दें. ये कॉमन सेंस है. ये पैगाम पीए कॉलेज और कॉमन सेंस कंजर्वेटिव किताबों से पेश किया गया.
بھائی خواتین کو تو زیورات بہت اچھے لگتے ہیں، چوڑیاں لے لو، کڑے لے لو، چینز لے لو، سٹون جیولریز، روبی جیولرز کا نام یاد رکھنا۔ شادی بیاہ ہے یا عام کوئی چھوٹا برتھ ڈے پارٹی اپ یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے، یو مسٹ وزٹ روبی جیولرز۔ گولڈ کا ٹریڈ ہے یا پھر ریپیئر ہے، روبی جیولرز 7086 ایئرپورٹ روڈ، 9056776888۔
پیرن مکے مینس ویئر، تھری ایلیمنٹس دیٹ ریپرزینٹس دی برانڈ، فٹ کوالٹی اینڈ ویلیو، کوالٹی کمپیریبل ٹو ہیری روزن، بربری اینڈ ہوگو باس۔
نیو کلیئرنس اینڈ آؤٹ لیٹ لانچڈ، 100% اٹالین وول سوٹس فرام 249.99، 100% ایجپشن کاٹن شرٹس فرام 29.99، 100% اٹالین وول ٹراؤزر فرام 49.99، لائٹ ونٹر